रूपम रूपम तस्या व्रजवुरी परिम माथुरीम गोष्ठवाटिम राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासम प्राप्तो जस्य प्रथिति कृपया श्री गुरु तं नतोऽस्मि वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदेक तेंदीवरम जड्डन जागुडरोचि संविदधतं पट्टंबरस्य सिया बिंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेम दामो आज सवेरे एकादशी के दिन आप लोगों ने पंचक्रोशी वृंदावन की परिक्रमा की। टुडे इन मॉर्निंग आफ्टर आवर क्लास यू डिड पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा एंड सो मेनी प्लेसेस यू सॉ एस्पेशली आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू गो टू पानी घाट नियर बाय ओ क्या पूरा वृंदावन आदि बद्री यू विल गो टू आदि बद्री एंड देयर यू विल सी वेयर श्रील व्यास देव मेडिटेटेड श्रीमद् भागवतम होम श्री एंड देन ही टॉट इट टू सुखदेव गोस्वामी एंड सो मेनी प्लेसेस यू सॉ दैट आई टोल्ड इन मॉर्निंग। नाउ आई विल बिगिन माधुर्य कादंबिनी but fortunately one disciple of very learned scholar Shishi Paramadvaiti Maharaj is here. Bhakti Alok Paramadvaiti Maharaj is here, a very influent speaker. I request him to speak something how we can increase our Krishna consciousness. So now he is going to speak.
How does this work? How many minutes?
15 to 20.
Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavati Pasukhati Sukhani. Bhaktyamina Aparatam Hatsham Chittas Chakkamadi Jalangamati Amayi Chang Shalanam Pratamam Vildeni Nastesh Hamadhi. when my spiritual master, Srila Prabhupada, arrived in the USA, on the boat he wrote a poem, and he said in that poem that he would have been named Bhaktivedanta, but that he didn't see that there was any devotion or any knowledge in him. I feel very ashamed in front of all of you, and of absolutely no scholarly nature or of any expertise, but being requested Srila Narayan Maharaj to speak, I simply beg you to pardon me for my incapacity to say anything better or more appropriate or more enthusing. The subject matter, how to advance in Krishna consciousness, it's a very important topic for me and for all of us, because you know the years pass by fast, like a lightning bolt just flying by, and still within the periods so many tests and trials come across our path, so many enigmas to be resolved, so many questions to be answered, and sometimes we simply don't know where to look. I've learned from the very beginning of the days when I came across the Gaudiya Vaishnavas that attachment to the lotus feet of the spiritual master fulfills all desires. And being attached to the words emanating from his lotus mouth is the best guiding star in one's life. This was so nice to see how Lord Krishna, some or other, again and again makes his appearance in the form of his devotees who are affectionately caring for us, pull us forward on this path and show us the importance of chanting the holy name and to remove the weeds which grow along with the seed of bhakti, the bhakti lota bija, and how by trying to do so in the appropriate association we can further develop into the world of spiritual unending development, which my sannyas guru Srila Bhaktivinoda Srila Maharaj called the positive and progressive immortality. That in itself is inconceivable for my little brain, but it must be positive and it must be progressive, because each and every one of our souls is longing for nothing but that. Stale, pale, monotone, rhetoric, manipulative, bureaucratic, such things cannot enchant our soul. They simply drag us down to question even the basic elements which are the foundation of our spiritual life of attempted dedication. But the positive and progressive immortality reveals itself in an ever-enchanting variety of sweet revelations of the same absolute truth. Once a description was given of the very prominent teachers in our Gaudiya Math family. They were Jajiva Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Rakak Srila Deva Goswami Maharaj. In that particular instance, I don't recall who said that, I just heard it. It was comparison given that Srila Jajiva Maharaj, his preaching and explaining of Harikatha was like a clear, beautiful pond where you can see all the way to the ground, all the stones and little fishes inside. Then it was compared that Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj's delivery was like a roaring river coming down from the mountains with a clear, pure essence just over, flooding everybody with nectar. And then the delivery of Srila Bhakti Rakak Srila Maharaj was compared to the clear nectarian well which produces fresh water from the unknown quarter, which is not being heard of necessarily in that same way before, but it is of that quality that one can recognize its pristine purity at once. This example comes to my mind when I think about how many varieties of spiritual deliveries and priorities appear before our eyes as Gaudiya Vaishnavism sweeps over this planet in one and another way, all bringing people to Vrindavan, all bringing them, many of them at least, to Kartik. At least in their heart there is this longing to be here, rolling Braj Raj, and hear from the lips of the pure devotee. That is the sum and substance of feeling enthused in spiritual life, that we know where to turn, that we know that through our sincere inquiry, further installments will be delivered to us, which will enhance our capacity to increase our dedication, to become sold out servants of the truth and of our divine master. Only thinking of the sacrifice which they have all done for us should be enough to convey to us the necessity not to waste any time and not to spare any effort to bring to others the secret treasure delivered to us by our Gurudev. Everybody should be happily accommodated in this family of Krishna consciousness. And everybody has the right and duty to his fullest heart's content to deliver to others what he has received from his Gurudeva in such a kosh, careful and loving way. So, loaded with so many jewels from hearing from the right source, we are gaining a responsibility with all those who are to cross our path onwards. And in their company, we once again may rejoice the memory of that great loving master as he was instructing you and guiding you, and who has come to you now in the form of the anxious listener, checking on you and further extracting from you some of those valuable treasures which were invested into your existence. Due to causeless mercy, undoubtedly, because if there's anything I can appreciate today, then I can only following in the footsteps of Socrates say the only thing I really know is that I don't know anything. And if I still feel that I have anything to say, then I owe that to the causeless grace of the one who has put his grace on me and accepted me in the fold of those who we call ourselves his disciples. Living up to the standard of being a real disciple undoubtedly is a very, very great task. And sometimes we become a bit morose, seeing our lack of capacity to actually follow his call to that degree and to that extent he impressed upon us would please him. And in separation from the beloved spiritual master, that is obviously becoming increased difficult. But thanks to the divine destiny, again, spiritual guidance comes to us when we are anxious for it and pulls us once again onwards. Once Srila Bhaktivinoda Maharaj said, you don't know who are all your spiritual masters until you actually reach the goal of pure love. So we are always looking forward to be blessed by the associated Vaishnavas, by all their kindness and their wonderful disposition to include you somehow or other in their fold, in their blessings, in their prayers. And when you feel that comfort, that surge, or that what pulls you forward, then you can only remember once again how the divine name and the divine message has come into your life. Guru Tattva is a unique and very difficult to understand topic. Many, many books have been written about it, and still it seems to be quite beyond the intellectual assessment of anyone. Guru Tattva, Jiva Tattva, Shiva Tattva, these are very high topics of the Lord's intervention into this world. And even though they are so far from being grasped, still they are coming so close to us in the form of Gopeshwar Mahadev, in the form of the pure devotee, in the form of our Guru Parampara, as it has manifested all around the world and is gracing so many souls. I offer my most humble obeisance to the assembled Vaishnavas, to the sannyasis, to Srila Narayan Maharaj, and beg for your mercy so that I may be able to go on, pull on, like they say, to pull on in this path and not become an embarrassment to my spiritual master. Thank you very much.
अभी परमाद्वैती महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किए. He told so many good things. He remembered me the name of परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति जाजावर महाराज विचार जाजावर महाराज then भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज पूर्व पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज. I am fortunate to meet with all these high class of Vaishnavas. But also I met to whom he has not met. Oh, Param Pujyapad Nemi Maharaj. Oh, he was Nemi Maharaj. Vaikhanas Maharaj, so learned.
Giri Maharaj.
Oh, Pujyapad Giri Maharaj. His sound was like roaring cloud roaring, more than that. Asham Maharaj. Oh, Ban Maharaj was not less than anyone. Oh, Pujyapad Bharati Maharaj. If one weeping, oh, when he will hear, oh, began to laugh.
And tallest among all disciples of
Lord. Also, I was serving till 60 years to my Gurudev. Oh, he was loyal. And others, so many, I know. So, if we will follow them, really our bhakti will progress. I want that we are so many in groups preaching here, there. It is okay. But we should try to associate among us and preach the mission in whole world. As my Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj was preaching in whole world. Now I am coming to Madhurya Kadambini. अभी हम लोग माधुर्य कादंबिनी में भक्ति के लिए विरोधी भाव देमोट्स व्हिच आर अगेंस्ट भक्ति उसके संबंध में विचार कर रहे हैं. और ये बहुत जरूरी है. इट इज सो एसेंशियल. यदि भक्ति विरोधी भाव दूर न हो, भक्ति में एक इंच भी हम नहीं बढ़ सकते. इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर्य कादंबी ने महाप्रभु की मधुर कृपा को सरस कृपा को अनुभव कर उसमें डूबने के लिए ये सब बतलाया. पहले सब अनर्थों को छोड़ो. इसलिए सब प्रकार के अनर्थों का वर्णन करते हुए वे सेवापराध नमापराध वैष्णवापराध और भगवत अपराधों का वर्णन किया. भगवान के श्री चरणों में विग्रह सेवा में जो अपराध होते हैं सेवापराध करते उनको छोड़ना चाहिए दूर से. भगवान के नाम के प्रति जो अपराध होता है उन्हें नमापराध कहते हैं. वैष्णव या भागवतों के प्रति जो अपराध होते हैं उन्हें वैष्णव अपराध कहते हैं. और भगवान कृष्ण या राम और या नृसिंह इत्यादि के प्रति जो अपराध होते हैं उन्हें भगवत अपराध कहते हैं। यद्यपि वो सब एक ही हैं, नमापराध में सभी आ जाते हैं, तो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम लोगों को समझाने के लिए इन सब का वर्णन किया है। यू कैन एक्सप्लेन।
So here, the last 10 days, we've been discussing pretty much only what that which is virali to bhakti, that which is against bhakti. Because if all these unhelpful elements are not removed from our bhajan, then we cannot advance one inch towards the goal of pure Krishna consciousness. Therefore, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur has first himself drowned in his nectar, given by Mahaprabhu, then he is distributing to us. Therefore, first, we must throw away all unwanted things, all anattas, that which has no value. Therefore, we have discussed Seva Parad, Vaishnava Parad, Nama Parad, and Bhagavana Parad. Those 33 offenses made in the service to the Vigraha have been described as Seva Parad. The 10 offenses to the Holy Name have been described here as Nama Parad. Offenses to the different incarnations, like Sri Ram, Sri Nrisimhadev, Sri Krishna himself, has been described as Bhagavan Aparad. And the 6 offenses to the Vaishnava have been described as Vaishnava Aparad. So still, even though all offenses are included within Nama Aparad, still Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur has delineated separate categories.
बतलाया गया है पाप का संबंध शरीर और मन से है और अपराध का संबंध आत्मा से है। पाप भोगने पर दूर हो जाते हैं किंतु भक्ति को स्पर्श नहीं कर पाते। पाप दूर तो होते फिर भक्ति हो जाएगी किंतु अपराध सजीव नहीं दूर होते। वे भक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। अपराध का अर्थ ही है अपराध। राज बने संतोष, प्रिय जो भगवान की और वैष्णवों की प्रियता को संतोष को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको कहते हैं अपराध। नमापराध से भगवान नाम प्रभु का, वैष्णव अपराध से वैष्णवों का, और भगवत अपराध में भगवान का संतोष दूर हो जाता है। इसलिए खबरदार ऐसे काम मत करो। सेवा, नाम, वैष्णव तथा भगवान की अप्रसन्नता में भगवत भक्ति कैसे रह सकती है? नहीं बढ़ सकती। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे भगवान नाम, भगवान, वैष्णव, भक्त इनके चरणों में अपराध न हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो अपराध उत्थ जो पहले कहा गया है उससे केवल नाम अपराध को समझो, सेवा अपराध को मत समझो। क्योंकि जितने भी भजनशील भक्त लोग हैं, साधक हैं, भगवान नाम ग्रहण करते हैं, कोई संख्या पूर्वक नाम करता है, कोई उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करता है नियम से, अतः नाम से ऐसा नाम करने से अपराध दूर हो जाते हैं। फिर गीता, भागवत के स्तोत्र, गोस्वामियों के स्तोत्र इत्यादि पढ़ने से, पाठ करने से सेवा अपराध भी दूर हो जाते हैं। विशेषतः प्रतिदिन नियम से श्रद्धा पूर्वक भगवान की श्री विग्रह की सेवा यदि कोई करता है तो सेवा अपराध निवृत्त हो जाते हैं। अतः सेवा अपराधों का अंकुर ही नहीं उदित हो पाता और न सेवा अपराधों से अनर्थ की संभावना ही रहती है। अतः अपराध अनर्थ से नामापराधी लक्षित होता है, सेवा अपराध नहीं। यो
Therefore, pap, sinful activity, has here been related to body and mind only. So, aparad is actually directly concerned with the atma. Therefore, the effect of pap is removed very easily, but the effect of aparad is not removed so easily. Aparad means what? Dharha, he means santosh, santoshti, when the object of seva is satisfied with us. So that satisfaction that Hari Guru Vaishnava or the affection to us, apa, that which destroys the affection or love that the Ishtadev has towards us or that we have towards the Ishtadev is called aparad. Therefore, by seva aparad, one's attraction or affection towards the Vigrahara is diminished. By Vaishnava aparad, one's attraction or seva vritti towards the Vaishnavas are diminished. And by Bhagavan aparad, our attraction and Bhagavan's attraction to satisfaction with us is destroyed by Bhagavan aparad. Therefore, we should not perform any activity which will in any way diminish our attraction or affection or love for Harinam, for his devotees, or for Bhagavan himself. Therefore, seva aparad has been given in a separate category to nama aparad. Why? Because by hearing the kirtan that is performed in a regulated way by the Mahabhagavat, very easily the effects of seva aparad will be destroyed. By performing stotras, that means prayers that have been written by our Goswami towards Thakurji, Hari Guru Vaishnava, by offering these prayers in a regulated way, then very easily our tendency to commit seva aparad will be destroyed very easily.
अब पहले सेवा अपराध को समझो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवा अपराध। इससे बचने की चेष्टा करो। भगवान के मंदिर में किसी सवारी पर चढ़कर जूता पहनकर मत जाओ। भगवान के उत्सव में खूब समारोह से मत मनाओ। भगवत उत्सवों को खूब विशेष वो क्या कहते हैं आडंबर के साथ में मत मनाओ, जैसे जन्माष्टमी मनाने लगे और उत्सव में ऐसे रम गए जो भगवान को भी भूल गए, भगवान का स्मरण भी लोगों को खिलाने पिलाने में लग गए और बस भक्ति गई दूर। सर साज रूप में जो भगवान का स्मरण हो, भगवान को कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, ऐसे उस को मनाना चाहिए। नगर संकीर्तन किया, हजारों लोगों को कृष्ण नाम सुना दिया, उत्सव हुआ, लाखों लोग आए और हरि कथा हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है और उत्सव में भी सबको महाप्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं जे बोलो शरीर अविद्या जाल जड़न जी अतहाय काल जीव फैले विषय सागरे कार मध्य ज्वाति लोभमय सुरमति ताके जिता कठिन संसार कृष्ण बड़े दयामय करिवारे जीवा जाय सप्रसाद अन्न दिल भाय से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चैत हरे कृष्ण Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.
Oh, in this way we should do and we follow. In Mathura we do और इसको ऐसे ही हम लोग करते हैं. भगवान की सवारी आते देख करके प्रणाम न करना अपराध है. प्रणाम करो. झूठे मुख से भगवान का दर्शन मत करो. खा रहे हो और भगवान का दर्शन कर दिया, झूठे मुख से मत करो. भगवान के साथ सामने खड़े खड़े घूम करके परिक्रमा करना, माने ठाकुर जी सामने आए ना और कोई परिक्रमा कर रहे हैं तो ठाकुर जी के तरफ में पीठ मत दिखाओ, पैर फैला करके मत बैठो ऐसे. अब जैसे मैं हूं और पैर फैला दिया आप लोगों का, ये अपराध हो जाए. ठाकुर जी के सामने पैर मत फैलाओ, गुरु जी के सामने पैर मत फैलाओ. पैर पर पैर रख करके मत बैठो, पैर के ऊपर में पैर. ठाकुर जी के आगे सो मत, जहां हरि कथा हो रही है मत सो उनके सामने, खड़े हो जाओ. और नहीं तो मिर्च की बुकनी लेकर के आंख में थोड़ा सा लगा दो. ठाकुर जी के सामने भोजन मत करो, गुरु जी के सामने भोजन मत करो. झूठ मत बोलो ठाकुर जी के सामने, जोर से मत बोलो. ओ, संसारिक बातचीत मत करो. यहां भी भगवान की कथा हो रही है, संसारिक बात मत करो. ओ, संसारिक दुखों से दुखित होकर के उनके सामने मत रहो. राधे राधे कह करके, कृष्ण कृष्ण कह करके, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह करके रो खूब, किंतु संसारिक बात के लिए मत रहो. किसी पर कृपा मत करो, किसी के ऊपर में कृपा मत करो. दूसरों के प्रति किसी को दंड मत दो ठाकुर जी के सामने. ठाकुर जी के सामने ही किसी को मारने लगे, मत करो. किसी के प्रति कठोर वचन मत बोलो ठाकुर जी के सामने, याद रखो भाइयों. और कंबल में ओढ़ करके सेवा में मत जाओ, कंबल गिरेंगे पानी में जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा. किसी की निंदा मत करो ठाकुर जी के सामने, गुरु जी के सामने किसी की भी निंदा मत करो. किसी की स्तुति मत करो ठाकुर जी के सामने, हंसी दिलगी मत करो. और आधा वायु मत छोड़ो ठाकुर जी के सामने. जरा कम खाओ, हजम हो पेट में. ठाकुर जी को निरस पदार्थ भोग मत लगाओ, रसयुक्त मत लगाओ. नए नए फल बिना भगवान को अर्पण किए मत ग्रहण करो. भगवान के उत्सव के लिए लाई हुई सामग्री से उसके पहले कोई चीज ले लिया, किसी को दे दिया, ये मत करो. अपनी स्तुति मत करो, गुरु की स्तुति में मौन रहना, अर्थात गुरु की स्तुति में मुखर रहो. पूजनीय पुरुषों के पीठ पीछे बैठना, गुरु को वैष्णव को पीछे रख करके मत बैठो. चलते समय यहां सभा में बैठे हो, सबके ऊपर में सिर पर पैर दे करके चलते गए ऐसा मत करो. नीचे झुक करके यदि जाना हो, दोनों हाथों को इस प्रकार से झुक करके नम्रता के साथ में जाओ. ऐसा नहीं कि चल रहे हो धड़ाधड़, किसी के सिर पर पैर, किसी के ऊपर में पैर, किसी को लगा लात, किसी को घूसा, ऐसा मत करो. भगवान के सामने किसी को भी दंडवत मत करो, केवल गुरु को. गुरु के सिवा किसी को प्रणाम मत करो, किसी देवता की नंदन मत करो, इत्यादि. ये सब चीजें हैं ये धर्मशास्त्र में. इसका तत्व भी बहुत से अपराध हैं जैसी बचना चाहिए. है तो छोटी छोटी बात, किंतु सेवा अपराध है, से भक्ति नष्ट होगी. हाँ, यू कैन. হারি ঠিক মনে করবো
Therefore, we should know what are these seva aparadh and try and save ourselves from them. Firstly, we should not be carried in a palanquin or wear shoes before the Lord in the mandir. In the big festivals like Janmashtami, we should not become absorbed in external activities to the detriment of our remembrance of Hari Guru Vaishnava. Therefore, all our activities in our festival should be aimed towards the remembrance of Hari Guru Vaishnava. Do not offer pranams to the Lord in the first thing in the morning. This is offense. To have darshan of the Lord just after eating with a dirty mouth. This is aparadh. To point one's feet towards Hari Guru or the Vaishnavas. This is offense. To sleep while reading Shastra, while chanting Harinam, or to sleep before the deity. This is aparadh. Therefore, if you're feeling sleepy, you can put some chili in your eyes. To eat before the spiritual master is offense. To tell lie before the deity. To speak Gramigata before the deity. To weep for material possessions or material gain or loss before the deity. No harm if we can weep before Nityananda, Ganada Pandit, Radha Vinod Bihari. For their pretty weep, for their love, we can weep. But to weep for material things, lamentation for that in front of the deity is offensive. To give mercy to someone or to chastise someone before the deity is offensive. To wear a blanket while being pujari, because the blanket may go in the ashram pot. This is offense. To blaspheme someone or to praise someone before the deity. This is offense. To laugh and joke before the deity is offense. To pass gas before the deity. This is offensive. To offer dry, tasteless foodstuffs to the Lord is also aparadh. To eat something, boga, to eat the boga or to offer the boga to someone else before the Lord is aparadh. To glorify oneself before the deity is offensive. Therefore, one should always glorify the spiritual master instead. To sit in front of senior Vaishnavas means they are in the back and we are in the front. This is offensive. When we are walking through the crowd of the Vaishnavas, to put your feet on their heads, this is offensive. If we want to walk through the crowd, we should be very humbly like this and ask the Vaishnavas to lift their feet and legs, and we should go like that, very humbly. Not that we're walking on everybody's head. Especially when everyone rushes to give pranam to Gurudev, who is there before they don't care. This is aparadh. Therefore, to offer pranam to anyone else before the spiritual master or the Lord, this is also seva aparadh. We think these are very small and important things, but these things are hindering our devotion.
श्रीमद् भागवत और गीता में कहा गया है न ही ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धवान्वर्ति मया व्यवसिता सम्यक् निर्गुणत्वाद् आशीषा गीता में भी ऐसे ही कहा गया है जिसका आरंभ करने से विनाश नहीं नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायुन विद्यते सर्वमपि अस्य त्रयतो महतो क्या माने द भागवत धर्म अर्थात भक्ति यदि आरंभ कर दी जाए श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन इत्यादि तो यदि समाप्त न हो अर्थात सिद्धि न हो उसके पहले ही यदि जीवन पूरा हो जाए कृष्णदास
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय
Jai Jai
Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai J
राधे जय कृष्ण बोल के राधे बोल जय राधे
जय राधे जय कृष्ण
बोल जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे
भक्ति के आरंभ कर देने पर बीच में मृत्यु हो जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए, तो भक्ति नष्ट नहीं होती, फिर दूसरे जन्म में वो वहीं से आरंभ होगी। भरत महाराज जी घर छोड़ करके गए और वन जंगल में जाकर के भावावस्था को प्राप्त हुए, एक हिरणी पर हिरणी के बच्चे के ऊपर में आसक्त हो गए और फिर क्या हुआ, मरते समय हिरणी की याद करने से बस उनका तीन जन्म नष्ट हुआ, किंतु जब ही उसका फल भोग लिया फिर भक्ति आरंभ हो गई। अपराध नहीं था, नहीं करना चाहिए उस बच्चे को स्नेह, किंतु बेटे के समान बेटा को तो छोड़ दिया और एक हिरणी के बच्चे को स्नेह करने लग गए। हुआ क्या, इतना भक्ति करने पर भी उनकी ये दशा हुई तो दूसरों की क्या होगी। तो फिर पाप का फल भोग लेगा और भक्ति फिर आरंभ हो जाती है, क्योंकि भक्ति निर्गुण है। भगवान ने यह भी कहा है, दशार्णो अयम जप मात्रे न सिद्धि भवे, दशाक्षर मंत्र गोपाल मंत्र, अभी हम लोग इसको कितना 24.5 अष्टादश, और पहले ये दशाक्षर में ही हो जाता था। तो इसके करने से नाम मात्र से ही सिद्धि को देता है। चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर विचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत से वचन शास्त्रों में देखे जाते हैं जिनका तात्पर्य स्पष्ट है भागवत धर्म या भक्ति का अनुष्ठान पूरा न भी हो, जितना हो जाएगा उतना फिर आरंभ हो जाएगा दूसरे जन्म में, या विघ्न समाप्त होते ही और फिर आगे बढ़ जाएगा। वो फल जरूर प्रदान करता है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि अपराध और पाप के अनुष्ठान से हो रहे हो, भक्ति का अनुष्ठान जितना भी हो रहा है हो चुका है, वह फल देता जाएगा, उसे बंद नहीं होता है। दशाक्षर मंत्र जपने से सिद्धि प्रदान करता है, ये जो पहले कहा गया है। अपराध यदि आदि के द्वारा मंत्र के फल प्रदान में कोई विघ्न होने की आशंका नहीं उठती, कैसा भी आचरण मंत्र जप करने वाला करता है उससे मंत्र की सिद्धि होती है। अब यहां पर यह बात तो ठीक है, किंतु शंका क्या है, संदेह क्या है? भक्ति अंग अथवा मंत्र के बल पर जो नमाप अपराध होता है, जो नमापराध भी करता है और साथ साथ में मंत्र भी जपता है, भक्ति भी करता है और सोचता है मेरे भक्ति करने से जो पाप इत्यादि फल हैं, अपराध हैं, ये दूर हो जाएंगे, डरता नहीं है, पुनः पुनः करता जाता है, वैष्णव की निंदा करता है, सोचता कि हम तो नाम कर रहे हैं, हमारा इसका कोई कुफल नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, ऐसा करने से वो वज्रलेप हो जाता है, नाम के बल पर पाप बुद्धि हो जाता है। इसलिए वैष्णव की, गुरु की और दूसरे लोगों की भी निंदा मत करो, पर चर्चा मत करो। भक्ति के अंग का अनुष्ठान अधूरा छूट जाए, उसकी अंग की हानि हो जाए, मंत्र जप में किसी आचरण की अपेक्षा न रखने पर भी सिद्धि मिल जाना, यदि हम इसलिए सोचते हैं अपराध भी करेंगे, पाप भी करेंगे और नाम करेंगे, भजन करेंगे तो सब दूर है। आजकल यही देखा जा रहा है, आजकल करके जीवन में यही देखा जा रहा है, कोई पाप से नहीं डरता, कोई अपराध से नहीं, वैष्णव अपराध से नहीं डरता, और फल यह होता है कि उसका हृदय और कठोर होते 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 और करते करते भीषण नरक में जाता है। इसलिए ऐसा मत करो तुम लोग। तो इसका प्रायश्चित नहीं है, पाप का प्रायश्चित है, किंतु ऐसे अपराधों का कहीं भी ये नहीं है। पाप की इच्छा लेकर भागवत धर्म के आचरण का या मंत्र जप करने का उपदेश नहीं दिया गया है, उपदेश दिया गया है करने के लिए, किंतु पाप भी करो, अपराध भी करो, वैष्णव को मारो पीटो, उनका अपमान भी करो और हरिनाम भी करो, लाल कपड़ा और तुलसी माला हाथ में झूली ये सब भी रहे और करो खूब छू, ऐसे लोग जहन्नम में जाते हैं, नरक में जाते हैं। यो सोच
देखो, Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam have described Nahi Ango Pakanani Dvam So Madhara Vasyo Devangati Maya Vyasi Tehas Samyam Tegu Nantva Dhanishisha O Udu
Pala Vidai Mene?
Panda Vidai.
Here, in the Bhagavatam, Krishna says to Udu, O Udu, the point being, even if one starts his performance of the limbs of bhakti like shravan, kirtanam, vandanam, smaranam, etc. But he cannot achieve perfection in his performance of bhajan because of an untimely death. Still, he should not have any fear because again he will start his bhajan from his next life. And Gita also says the same thing. A small performance of this dharma will save one from the greatest fear. Therefore, the example is given in Srimad Bhagavatam. How Balaram Maharaj left everything, his kingdom, and went to the Himalayas, but became attached to a small deer. Therefore, he suffered reaction of his past sinful activities. Then, again, after some time, his bhakti began again. He left his son. He left his son and made a deer into a new son. Therefore, he made one mistake. And how many mistakes we are making? He did so much bhakti and still he achieved the result, that result. So therefore, no fear for him, because again, he continued on from his next life. Therefore, in the time of Mahaprabhu, the Gopal mantra was 10 syllables. Therefore, Sri Vishnu Chakravarti Thakur is saying, one who chants this 10-syllable mantra, without any doubt, he will achieve complete perfection, even if there is some mistake in his pronunciation. Therefore, we should have no doubt. Definitely, this chanting of Gopal mantra will give the fruit. But still, there comes a doubt. If someone performs a chanting of mantra and performance of Harinam, but still, on the strength of his mantra chanting and Harinam, he commits sinful activity, will he be saved? Will he get the result of bhakti? If that person thinks, I will commit offense to the Vaishnavas or to Harinam and commit sinful activities, then he will never taste the result of mantra chanting or Harinam. Instead, that mantra chanting and Harinam will become like a thunderbolt and finish him. Therefore, in no way, in any way, we should never gossip or blaspheme Hari Guru or the Vaishnavas. And Guru Maharaj says, today we are seeing, I see. Today I see everywhere that people are not afraid of committing any type of sinful activity or any type of aparadha. But don't worry, those persons will definitely go to hell. Even though they may have taken red cloth, tilak, chanting Hari Bol, still, nothing can save them. They will descend to the hellish planets. Therefore, sinful activity has some type of prayaschitta, some type of repertory process. But there is no described repertory process for those who commit sin on the strength of the holy name.
Thank you. Tomorrow, we will finish our parikrama of Vrindavan. Day after tomorrow, we will go to Govardhan. In the way, Chandra Sarovar, Aitha, Paitha, Chandra Sarovar, and so many places. And tomorrow we are going to Bhatraul. Bhatraul means the place, a village where gopis, Jagyapatni were residing there. And Krishna went there. And Brahmins were doing yajna at where we will go, take prasadam. No, Akru Ghat nahi hai wo. Wo Bhatraul se jo jahan jayenge na, जहाँ ऊंचा स्थान पर बना हुआ है मंदिर, वो यज्ञ स्थली था और कृष्ण ठहरे थे उस गांव के निकट, हाँ, अक्रूर घाट के पास में जो गांव है, महाप्रभु भी वहीं पर आकर के ठहरे थे और वहीं से यहाँ पर आते थे, हमारे इमली तला में आते थे। उस समय वन जंगल था, तो उस स्थल में जाएंगे और वहां से फिर यज्ञ स्थली में जाएंगे, वहां से फिर लौट आएंगे। पारण 8:44 से लेकर 9:28 तक है। हम समझते हैं कुछ पारण के लिए कुछ दाना ले लेना, मुढ़ी का या कुछ, 9 बजे के करीब में पारण कर लेना। और हम समझते हैं कि वहां पर पहुंच जाएंगे 9:30 जहाँ पर प्रसाद कुछ पाएंगे, अनुकल हम लोग करेंगे पारण, और इसके बाद में यहाँ पर चले आएंगे। अभी हमारी यहाँ की यात्रा समाप्त हो रही है, इसलिए यात्रियों से निवेदन है कि पंडा जी के लिए विदाई जो सब जगह हम लोग देते हैं उसको अभी दे दें, पंडे को हम कल विदाई दे देंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज दैट पंडा इज लीडिंग अस हियर इन वृंदावन ए प्रिफर सो और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और अदर्स दे गो टू ईच डिवोटीज एंड दे शुड पे समथिंग
Yeah. Also tomorrow.
Or Brahmacharya.